તારીખ 30/12/1993 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 201 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું દેવલાલીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 11.
સમારોહ કા પ્રાપ્ત તો મેરા મન કહા લગતા હૈ કામ કર સકતે એસા સહેજ હોના ચાહીએ કૃત્રિમતા કી બાત નહીં હૈ સભી પ્રકાર નામ લીધાસ્ત્રપૂર્વક સત્શાસ્ત્ર કા વ્યાખ્યા પરિભાષા પ્રયોગ કા પરિણામ કો બતાને વાળી પર્યાય ભી મૌજુદ હૈ જ્ઞાન શક્તિ ભી પ્રગટ હૈ તો ઉસકો જ્ઞાન સે જ્ઞાન કો લક્ષ્ય મે નહીં લેકર કે હમ જ્ઞાન શબ્દ કા અર્થ ગઠન કરેંગે તો જ્ઞાન ના ક્યા સમજે એટલે જો રાગ ભી ઉદ્ભવ હૈ રાગ ભી હમારે પરિણામ મે ચાલુ હૈ પ્રગટ હૈ લક્ષ્ય જ્ઞાન શાસ્ત્ર અધ્યયન હૈ કેવલ પર લક્ષ્ય શાસ્ત્ર અધ્યયન હોય છે પરિચય નહીં ભાવ કી બાતે ચલતી હૈ અચ્છી તરહ સમજા ગ્રહણ હોગા પરિચય કરના कंठस्थ कर लेना या याददाश्त में रख लेना, ऐसी कोई बात नहीं हुई। यद्यपि ज्ञानी का बोध विस्मरण करने योग्य तो नहीं होता है, किंतु केवल स्मरण का यह विषय नहीं है, स्मरण से भी कुछ आगे जाना पड़ता है। इसलिए स्मरण से आगे जाना पड़ता है कि स्मरण को विस्मरण की जो कभी अपेक्षा हो जाती है, जो प्रतिपक्ष में कोई चीज खड़ी है तो स्मरण विस्मरण की अपेक्षा से पार जा करके योग्य लक्ष्य को हमने हमारा लक्ष्य बना दे। इस हद तक हम परिचय करें तो चीज हमारे परिणाम रूप से छूटने वाली नहीं होगी, यानी कि छूटेगी नहीं। कभी अपना परिचय बनाया का परिचय विशेष करके कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी होता है कि दूसरे दूसरे उदय में हमारा समय और शक्ति का खर्च हो जाता है, इससे विशेष करके हमारा समय और शक्ति का सदव्यय शास्त्र में और शास्त्र में कहे हुए विषय के परिचय में हमें लगाना चाहिए।
परिचय का अर्थ तो बात जानकारी का है
जी।
परिचय का अर्थ मतलब जान पहचान होना, परिचय से तो ये मतलब निकलता है
पहचान होना, पहचान जानकारी बनी है जो पहली बात है जान पहचान। तो जानने पूर्वक पहचान होती है, इसलिए जान पहचान कहते हैं। तो पहचान में जानने का कार्य अवश्य है, जानकारी कर ली है, पहचान हमने कभी नहीं किया। आप चांदी के व्यापार करते थे, चांदी को हमने चांदी ही कहते हैं, लेकिन जानते हैं कि ये चांदी है लेकिन पहचानते नहीं है कि ये चांदी है, क्योंकि इसमें और भी मिलावट रुपये के नहीं होती है। लेकिन भाई बहुत जानते हैं कलाकार है, कई प्रकार के जो में अच्छी तरह मिल जाए, किसी को पता ही नहीं पड़े आम जनता को, चांदी के रूप में खरीद लेना अलंकार होता है, उसमें चांदी को कितने 50% रखते हो 70%। और कैसे लेते हैं 100% का चांदी का भाव अभी 6,700 चल रहा है किलो का, वहां तो ये लगेगा। और 30% 40% 50% तक दूसरी चीज जो हल्की होती है भाव में वो चांदी के भाव में मिल जाती है और अच्छा मुनाफा मिलता है। क्या कहेंगे उसको हमारे धर्म के क्षेत्र में, उसको क्या कहते हैं
क्षेत्रपिंडी
है,
क्षेत्रपिंडी
मायाचारी।
मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा नहीं है,
मतलब
निर्माण करते हैं उसमें ऐसा नहीं है, उसमें तो बोल करनी है, कह के करते हैं 1% 2% तो होता है, उस पर धन लोग फास्ट होता है।
रिटेल वाले को तो
हाँ रिटेल वाला करता है,
रिटेल वाला मर जाता
है, रिटेल वाला
बिजनेस वाला रिटेल वाला बस होना खाता है
जी। वो तो मायाचारी है, रिटेल
वो तो मायाचारी है,
पूरी मायाचारी है।
जिसका फल तीन दिन में 30 दिन क्या इसका फल आता है, तीन दिन पर इन लोग कहाँ जाएंगे,
और जो जीव सतपुरुष अगर कोई पहचान में आना चाहता है तो ज्यादा परिचय में आना चाहता है तो उस मार्ग में अगर जोड़ा अटकाते रहते हैं तो उतना वर्तमान स्थिति में तो दर्शन मोह प्रबल है तब तो ये काम कर ही रहे हैं और दर्शन मोह की वृद्धि भविष्य के लिए भी करते हैं ऐसा ही है क्या?
जैसे परिणाम है उसको कोई दुष्फल नहीं जाती जैसे जिसके परिणाम उसका वैसा फल परिणाम तो अपने को समझ में आता है सबसे विषय में जिसे अंतर नहीं करते सब शास्त्र का परिचय कैसे तो आरंभ परिग्रह से हमारा रस छुट जाए और ऐसे परिणाम के इस प्रकार के परिणाम के परिणाम में लेकर के शास्त्र का परिचय करें तो हम परिचय कर पाएंगे वरना पढ़ते जाएंगे या संक्षिप्त विषय बताएगा भावना में भी आ जाएगा या बौद्धिक स्तर पे अच्छी तरह बुद्धि ग्राह्य भी हो जाएगा किंतु उसका परिचय भावों का परिचय वाच्य का परिचय मर्म का परिचय ऐसा नहीं होगा।
परिचय की जगह भाव ज्ञान ले तो परिचय की जगह भाव ज्ञान सशास्त्र का भाव ज्ञान
भाव ज्ञान होना क्योंकि एक शुद्ध के भाव के लिए है इस भाव को अगर हम नहीं पहचानते हैं तो शास्त्र पढ़ते हैं परिचय नहीं करते हैं
भाव ज्ञान नहीं करते
तो फिर शक्कर जैसे शब्द है और शक्कर पदार्थ भी है शक्कर शब्द भी है और शक्कर पदार्थ भी है और पदार्थ को ज्ञान में भाव भाषित थोड़े नहीं और शक्कर मीठी है शक्कर मीठी है कौन जाने भगवान जाने क्या शक्कर होती है जैसे रूपा नहीं जानता है ऐसी बात होती है इस तरह से शास्त्र का परिचय विशेष रूप से कर्तव्य है व्यावहारिक कार्यों की प्रवृत्ति करनी पड़ती हो तो इसका मतलब ये है कि जो संपन्न है जिसको कोई उपाधि करने का कारण नहीं है व्यवसाय आदि मुख्य करके व्यवसाय लाभ के लिए है तो जो भी जिसको भी है जो कार्य दूसरे से करा सकते हैं ऐसा पुण्य लोग हो इस उपाधि में नहीं जाना जैसे काफी पैसे वगैरह की संपन्नता हो गई हो कि हम क्यों इसके पीछे लगते हैं पूरी संपत्ति तो हम खर्च नहीं कर पाएंगे जितनी आ गई है या अधूरी भी नहीं खर्च कर पाएंगे फिर भी हमारा मनुष्य पने का अमूल्य समय हम क्यों बर्बाद करें और किसी को ऐसा पुण्योग नहीं होता है तो उन लोगों को तो निवृत्ति ले लेनी चाहिए जिसको उपाधि करनी पड़े ऐसा प्रसंग उदय नहीं हो उसको तो निवृत्ति से आत्मकार्य में ही लग जाना चाहिए पूरा समय और शक्ति का व्यय सदवेय कर लेना चाहिए अपने आत्म कल्याण में समय शक्ति को लगा देना चाहिए तो शुद्धि आज्ञा है सत्पुरुष की इस शुद्धि आज्ञा है जिनेन्द्र देव की लेकिन इसको ऐसा पुण्य योग नहीं है वो भी नहीं सकता मिलता है संसार में तो उसको अपने हाथ से अर्थोपार्जन करना पड़ता है परिश्रम से करना पड़ता है तो घर काम भी अपने परिश्रम से करना पड़ता है खुद ही तो करना पड़ता है तो ऐसे करनी पड़ती हो इसका मतलब क्या है अभिप्राय तो वो है शिक्षक मुझे निवृत्ति मिले और मैं पूरा समय और शक्ति मेरे आत्मकल्याण में लगा दू। ऐसा अभिप्राय होने से इस प्रकार का पुनर्योग नहीं होता है तो करनी पड़ती है, ऐसा कहने में आता है। ऐसे वामनवादी कार्यों की प्रवृत्ति करनी पड़ती हो तो भी उसमें से वृत्ति को छिपकी वृत्ति उसमें तीव्र रस्ते नहीं जानी चाहिए। जो आता है जुड़ना पड़ता है, प्रवेश काल में उतना सतर्क हो जाना, प्रवेश काल में उतना जागृत हो जाना कि मंदिर से प्रवृत्ति हो, हमारे किसी भी उद्देश्य में तीव्र से प्रवृत्ति नहीं हो। और भैया कृपाल देव के वचन है इस आशय के, वहां कहते हैं कि ऐसी वृत्ति करनी पड़ती हो तो भी उसमें से वृत्ति को निरस्त करना जो जीव चाहता है, ऐसा जिसका अभिप्राय है, ऐसा जिसका प्रयास है, पुरुषार्थ है, जीव चाहता है प्रयास करता है तो ऐसा हो सकता है, वृत्ति निरस्त हो सकती है, वो जाती है, वो यही अवरोध का मिटाना है। हमें आगे बढ़ना है तो अवरोध को भी हमें हटाना चाहिए। अवरोध नहीं हटेगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमारे परिणाम में जो विद्वदे के परिणाम रूप रस है, यही हमारा सबसे बड़ा अवरोध है। अनुकूलता को हम नहीं चाहते हैं, अनुकूलता को चाहते हैं, प्रतिकूलता को नहीं चाहते हैं। इस प्रकार में तो रस तीव्र हो ही जाएगा। वास्तविक पॉइंट क्या है कि हमारे रस पर हमारी जागृति है या नहीं। जब परिणाम हमारे चलते हैं उस वक्त हमारी आत्म जागृति हमारे परिणाम पर है या नहीं है। अनुकूलता को हटाओ, जुटाओ, प्रतिकूलता को हटाओ, ऐसे तो मरते आए हैं सारे अंधकार से, इसमें ही मरते आए हैं। भावग्रहण उसी को ही कहते हैं, और क्या कहते हैं भावग्रहण। वास्तव में तो हमें अनुकूलता प्रतिकूलता की कल्पना ही छोड़नी है, वो कल्पना ही हमने छोड़नी है। क्या उस कल्पना में हम अनंत काल बिता चुके हैं, कल्पना से उतनी दृढ़ हो गई है कि उसको ही वास्तविकता मान करके उससे बाहर नहीं निकल रहे हैं। ये भारत तो हो गई है, अब वही करेंगे, शास्त्र पढ़ करके या प्रयास के पुरुषार्थ में भी वही करेंगे। प्रयास के काल में उन्हें तो वो बात हो क्यों बोलेंगी। तो ऐसे जो निरस वृत्ति से हृदय में प्रवर्तना चाहते हैं वो ऐसा कर सकते हैं, और अगर ऐसा करेगा तो शास्त्र के परिचय के अर्थ बहुत अवकाश प्राप्त हो जाएगा। समय से भी और शक्ति से भी दो प्रकार के अवकाश में क्या समय भी बच जाएगा, समय तो उदय में सीखने परिणाम है तो उदय के कार्य नहीं छोड़ेंगे हम, ये ठीक करो, ये ठीक करो, इसको ठीक करो, उसको ठीक करो, छोटे मोटे बाद में परिणाम सीखने हैं तो लगते ही रहेंगे, संदिग्ध नहीं होगी तो समय चला जाएगा, और उसमें हमारी शक्ति हीन हो जाती है, तो शक्ति से जो काम करता है वो अवकाश निबंध हो गया। निर्मित परिणाम जैसे शक्ति काम करने लगती है, हमारा ज्ञान निर्मल होता है। कषाय रस टूटने से, मंद होने से ज्ञान की निर्मलता होती है। तो ज्ञान शास्त्र का जो विषय है उसकी गहराई में जाने के लिए विशेष योग्यता को प्राप्त करता है। तो वो अवकाश शक्ति में भी बढ़ता है और समय में भी बढ़ता है, वरना समय में भी नहीं बढ़ता और शक्ति में भी नहीं बढ़ता। ऐसा भी नहीं कि बुद्धि कम हो जाती है, बुद्धि कितनी भी हो योग्यता कम हो जाती है। बुद्धि तो उतनी भी उत्तर सकती है, लेकिन योग्यता है तो अयोग्यता को प्राप्त होती है। इसलिए हर शास्त्र को अध्ययन करने वाले को ये बहुत सुंदर मार्गदर्शन है। हम शास्त्र को सारे दिन पढ़ते रहे और उदय में भी रस लेते रहे। एक आदमी नहाने को बैठा स्नान करने को, बहुत 10% साबुन लगाया, शैंपू लगाया, क्या क्या लगाते हैं आजकल मुझे तो इतना मालूम नहीं है, लेकिन बॉम्ब लगाते हैं, क्लीनर स्किन क्लीनर, वो क्लीनर वो क्लीनर, फिर फिर भी आते होंगे प्रसाधन जिसको कहते हैं, और 10-20 दिन बांधते थे तो पूरे गम में कपड़े डूब जाते ना, आजकल से कपड़े बाथरूम में लगाते हैं। तो ठीक बाद में एक ही टम्बलर सदार्थ में से भर करके लगा दिया, क्या तो अनुपात क्या है, कहां 10-20 बाल्टे पाने और क्लिनिकेटेड, और कहां एक टम्बलर गंदे पाने का, कौन बढ़ गया, एक टम्बलर बढ़ गया, इतना ज्यादा पानी के आगे और इतना क्लिनिकेटेड के सामने वो बढ़ गया क्या, एक ही टम्बलर बस है। गंदे होने में तो एक ही टम्बलर बस है, कैसी बात हो जाती है। इसलिए हम शास्त्र को बहुत पढ़े, सुनी सार पढ़े, प्रवचन सार पढ़े, जितने भी हम खरीद सकते उनके सब पढ़ डाले, और खाने बैठ गए तो खाने में ही इतना रस आ गया, दुकान पर गए तो व्यापार में इतना रस आ गया। उसके उदय में तो भले ही आप 15 मिनट के लिए खाना खाते हैं, 10 मिनट के लिए खाता है, या ऑफिस में खाली 10 मिनट का टेलीफोन अटेंड कर दिया, एक टर्नर बस है पूरी दुनिया के लिए। ऐसी बात अनुपात से नहीं देखी जाती है, उसमें रेशियो प्रोपोर्शन नहीं निकाला जाता है कि ये तो 10 मिनट डाल देती है तो एक ही टर्नर था, ऐसा नहीं निकलता उसमें। तो ऐसा नहीं हो जाए कि हम जो कुछ करते हैं तो नहीं होने के नहीं किया बराबर हो जाए, ऐसा नहीं होता। बहुत सुंदर मार्ग
प्रैक्टिकल बता दी,
भगवतों को ध्यान में रहता है, शास्त्र पढ़ने वाले को भगवतों को ये ध्यान में रहता है कि पढ़ने के बाद बुरे में हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि खाना पीना धंधा व्यापार कुछ परिस्थिति अनिवार्य है। ऐसे उदय की कितनी उदय की परिस्थिति ही अनिवार्य है, उस उदय में प्रवेश करना ही पड़ता है। तो फिर अनिवार्य है तो क्या है, बस उसको गौर कर दो, जैसा जैसे तो रस आ जाए तो ध्यान ही नहीं रहे, चलो तो करना ही पड़ता है, ऐसा नहीं चलता। विशेष रूप से यहां जागृति होनी चाहिए, अगर ये नहीं होगा तो कितना भी शास्त्र का अध्ययन हो सब बेकार है, और बेकार है कार्यकारी तो नहीं है इसलिए बेकार है, लेकिन अभिनिवेश का कारण भी हो सकता है, शास्त्राभिनिवेश में से हो सकता है।
एक नया रूप जो पहले नहीं था वो पैदा हो जाता है। तो कृपाल देव का जो मार्गदर्शन है बहुत पूरा ध्यान देने योग्य मार्गदर्शन है। आगे कहते हैं आरंभ परिग्रह पर से जिसकी वृत्ति खेद को प्राप्त हुई है, जिसको रस आता ही नहीं है, जिसको आता है उसको सावधान होकर के उसको निरस करना करनी चाहिए, लेकिन जिसको ऐसा विशेष विकास हो मुक्षुता का, जिसकी योग्यता कुछ विशेष हो और उसको कहीं रस आता नहीं है, चाहे पुण्य के उदय हो चाहे पाप का उदय हो कुछ भी हो, जिसको अपने उदय में रस नहीं आता हो, यानी इसका मतलब क्या क्यों नहीं आता है, अर्थकथन क्या है बहुत सुंदर कि असार जान करके उस प्रकृत से निरस हो गए, कुछ भी हो मुझे तो अनुकूलता अनुकूलता नहीं है, प्रतिकूलता प्रतिकूलता नहीं है, उसमें कोई दमी नहीं है, कोई सार नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है, ऐसा जिसका विशेष योग्यता रूप परिणाम मनुष्यता में हुआ हो, ऐसे जीवों के ऐसे जीवों को सत्पुरुष का समागम और शास्त्र का श्रवण हो जाता है। दोनों शरीर को क्लियर कर दिया है, जिसको नहीं हुआ है वो ऐसा करे, जिसको हुआ उसको तो बहुत लाभ मिल सकता है, उसको बहुत ही तो उसके लिए क्यों उसको अवरोध नहीं है, माइनस साइड उसके लिए मिल गई तो सीधे प्लस साइड है उसके पास, शास्त्र करेगा योग्यता बढ़ेगी तो समागम होगा योग्यता बढ़ जाएगी, तो उसको तो विशेष रूप से यह प्रसंग हितकारी होता है। आरंभ परिग्रह पर विशेष वृत्ति वर्तती हो यह जीव में सत्पुरुष के वचन का अथवा शास्त्र के बोध का परिणमन होना कठिन है, दुर्लभ है, क्योंकि उपाधि में घिरा हुआ है। यही स्वाध्याय मुंबई में हुए नरेश भाई, तो यही स्वाध्याय देवदारी में हुए, फर्क पड़ता कि नहीं पड़ता है, क्योंकि वहां तो उपाधि साथ में रख करके साथ साथ श्रवण करने को बैठते हैं, कई प्रकार के काम है वहां, दूसरा जो है तो टेलीफोन का कनेक्शन काट करके बैठ जाना है, अंदर के टेलीफोन का कनेक्शन काट करके प्लग को छोड़ देना है वहां, ना तो क्या है कि घंटी को बचती रहती है, नींद में भी टेलीफोन की घंटी बचती है और शास्त्र स्वाध्याय में बचती रहती है, उस उपाधि में कोई बात पल्ले पड़ने वाली नहीं है, कनेक्शन तोड़ करके छोड़ करके निवृत्त क्षेत्र में सब शास्त्र का अध्ययन समागम जो निवृत्त क्षेत्र होता है, इससे 10% 10% भी प्रत्येक क्षेत्र में इसका नाम नहीं होता है, उतना बड़ा अंतर है, 10 गुना से भी ज्यादा अंतर है, कितनी बात है।
आठ हित में क्षेत्र बाधक है, आठ हित में क्षेत्र बाधक होता है,
अपनी वृत्ति बाधक होती है, अगर यहाँ भी उपाधि करे तो चलो उपाधि पूरा हो जाएगा, फिर टेलीफोन लगाना है, अभी तो स्त्री का काम हो गया, हाँ लगा लेंगे बम्बई, हाँ तो जहाँ भी अपना कारोबार हो जरा बात कर ले, कम से कम परिवार से बात कर ले, ठीक तो हो अच्छे तो हो, हम भी कर ठीक है, खुद तो ठीक बने, क्या हो गया है, हाँ अभी किस काम के लिए आया हो, क्या काम करना है, फिर वो इधर रस लेते हो। जिस रस को वहां भी तोड़ना है, इस रस को यहां भी ले लेंगे तो फिर आपको बचने की नजर आ गई। ऐसी बात कर सकता है उपाधि, बहुत शक्तिशाली जीव है, यहां बैठा भी उपाधि कर सकता है, उसमें ताकतवर है। और काम करने वाले तो कृपालु देव तो मुंबई के ऑफिस में पाइजनी पर बैठ करके भी नहीं उपाधि थे। यहाँ पर उपाधि तो बहुत है लेकिन समाधि है, क्या लिखते
हैं तो बहुत है लेकिन समाधि है,
क्या लिखते थे कि कार्यो भूत कार्य, इतना उसका भीषण क्रोध मिल गया है। एक काम निपटावे तो 10 काम तो लाइन में खराब हो गए, क्यों में आना है 10 लोग, आपको ये मिलना चाहता, फिर आपको ये मिलना चाहता है, वो लोग बात बैठे हैं, वो लोग बात बैठे हैं, उसको तो निवृत्ति नहीं मिलने दे रहे। ऐसी हालत होती है ना जिसको बहुत काम होता है। ऐसे जीव में सत्पुरुष के वदन स्थान पाते नहीं, ऐसा जीव शस्त्रास्त्र का कितना भी अध्ययन करता उसको उपदेश की कोई असर मिलती नहीं, उसकी उत्तर क्षमता नहीं। आरंभ परिग्रह करते मिट्टी को फीकी करना और शस्त्रास्त्र की गहराई में जाकर के परिचय करना, उस परिचय में रुचि को लगाना, शस्त्रास्त्र के मर्म में रुचि को लगाना, परिचय तो मर्म में मर्म साथ जाता है, शुरू शुरू में कठिन पड़ता है। प्रारंभ से रोज करते हैं तो उसको वो कठिन पड़ता है, क्योंकि जो कठिन पड़ता है कि जीव का अनादि प्रकृति स्वभाव इससे जुदा है, प्रकृति स्वभाव विरुद्ध है, जुदा है मतलब क्या है,
विरुद्ध है,
विरुद्ध है, सभी प्रकृति इन दोनों से विरुद्ध है। जो सत्शास्त्र समागम और सत्शास्त्र का आत्मविश का विषय है वो आत्मस्वभाव के अनुकूल है, वो आत्मस्वभाव प्रकृति है, प्रकृति स्वभाव और आत्मस्वभाव प्रति पक्ष में है, आमने सामने है, इसलिए अपनी प्रकृति के साथ अपने को लड़ाई करनी पड़ती है। क्या है एक मनुष्य के जीवन में एक स्टेज, एक तबका, एक स्तर ऐसा आता है कि जो उसको अपनी प्रकृति के साथ लड़ना पड़ता है, वो जिसकी प्रकृति वो भी कुछ हो समाज के दिल में ही है, जिसको स्वभाव प्रति का मिलन करना है या होता है उसको पहले भीतर में एक सम्रांगण पैदा हो जाता है, लड़ाई का क्षेत्र हो जाता है और फ्रिक्शन घर्षण होता है, अपने आप से लड़ता है, प्रकृति से लड़ता है और प्रकृति को निरस्त कर देता है। प्रकृति है किसी की माया की प्रकृति है, किसी की मान की प्रकृति है, लोग की प्रकृति है, आपको समझ में आए इस बड़ी देखा देने में तो बहुत अच्छी बात है। मुख्य प्रकृति हो वैसे तो संसारी दिन में चारों चारों है अनंता मंदिर के, लेकिन कुछ एक या दो मुख्य हो जाती है कभी परिणाम चलता है। तो उस प्रकृति के सामने लड़ना पड़ता है, उसके सामने जूझना पड़ता है। ऐसा भी स्तर जीव का अनादि प्रकृति स्वभाव विरुद्ध है, इसलिए शुरू शुरू में उतनी तैयारी नहीं है, इतनी योग्यता नहीं है, तो कठिन पड़ता है, जाता है। जब तो प्रकृति का उदय आता है भीतर में, तो वह जाता है, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, ये बात हो जाती है। इसलिए थोड़ा कठिन भी पड़ेगा, किसी को कठिन लगता है, कठिन पड़ता है, हुआ तो भी ऐसा होए तो भी घबराने की बात नहीं है, इसका भी रास्ता है, और मार्गदर्शन दिया है। तो भी जिसको ऐसा करने का निश्चय किया, दृढ़ निर्धार किया है कि प्रकृति को हराना ही है, तोड़ना ही है, और हमें आत्म कल्याण करना ही है, किसी भी कीमत से करना है, तो ऐसा कर सकता है, तो ऐसा कर सकता है, उसने ही नहीं किया है कहा इधर। ऐसे जिनों जीवों ने ऐसा किया है, मैंने वो सक्सेस गए हैं, फिर नहीं गए, निर्माण करने वाले से होते नहीं, उसका निर्माण नहीं है, उसका ठिकाना देखिए थोड़ा करेगा, थोड़ा उधर जाएगा, थोड़ा उधर जाएगा, और फिर वो निष्फल हो जाएगा, आगे जा करके निष्फल हो जाएगा। लेकिन इसका निर्माण है, भाई मेरी प्रकृति कैसी भी है, जानता हूं कि मेरी बहुत बुरी परिणाम की स्थिति है, अच्छी नहीं है, बहुत बुरी स्थिति है, ऐसा जानता है, मगर मुझे तोड़ना ही है और मेरा आत्मकल्याण करना ही है, तो कर सकते हैं, और बहुतों ने ऐसा किया है। जितने भी जीव मोक्ष को प्राप्त हुए, वे सब हमारे जैसे संसारी है
जी,
सिद्धालय में गए हुए एक भी जीव परमात्मा ऐसा नहीं है कि तो निगो परिणाम की जो बुरी स्थिति है, इसका फल भी होता है, ये एक्सट्रीम कंडीशन है, इसे आगे कोई नहीं है, इसका फल नहीं जाता है, बुराई का भी एक एरिया है, कहीं जाता है, एक भी सिद्ध ऐसे नहीं है, अनंत सिद्ध भगवान ऐसे, एक भी आत्मा ऐसे नहीं है कि जो निगो निगो पहले नहीं थी। तो वहां तो पूरी की पूरी प्रकृति, सभी प्रकृतियों का मैं दब गया है, आत्मा इतना दब गया है कि इसका पता ही नहीं, इतना लापता हो गया है, बिल्कुल इतना दब गया है, सब विरोध में गया है। तो लोग संसार के दूसरे जीव को मानने को तैयार नहीं किए, जीव है
जीव है,
जीव का अस्तित्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, कब गया ऐसे कोई दिन है, बात देखेंगे। हमारी हालत बहुत अच्छी है, मनुष्य है, मनुष्य जमीनी है, भगवान जिनेन्द्र परमात्मा का मार्ग बिल्कुल साफ सुथ होकर के सुखा हमारे सामने हमको मिल रहा है, और हम इस मार्ग को ग्रहण करने के लिए पर्याप्त मात्रा में शक्तिमान है, सक्षम है, हमारी क्षमता है, योग्यता को हमें लाना है, हम ला सकते हैं। इतना सौभाग्य है हमारा, गुरुदेव की भाषा में कहे तो इस गुरुदेव वो कहते थे कि सब अवसर आ चुका है, होता है तो कृपाल देव के संत में कहे तो रांडी रुए मांडी रुए साथ हड़ताल वाली क्यों रोती है, दूसरा काम तो महिलाओं का होता है, साधन तो सब के होते ही नहीं है, और वो तो बात बात में आके गिर जाते हैं। तो कहते हैं कि जिसका धनी मर गया वो तो रोती है, बेचारे क्या करे उसका धनी मर गया। और किसी का जो धनी है कमजोर होता है तो वो भी रोती है, लेकिन साथ साथ धनी जिसको है वो भी रो है। ऐसी तरह हालत क्यों मेरे पुस्तक से छोड़ कर आ चुका है। तो बाद उन्होंने एक पत्र में लिखा है कि ये लौकिक कहावत वैसे तो अगंभीर है, हाथ से आता है इसलिए अगंभीर है, लेकिन इसका आशय कुछ गंभीर होने से इधर मैंने लिखा है। गंभीरता में लिया है कि गंभीर आशय है बात, कुछ शब्द शब्दार्थ से अगंभीर लगती है, आशय से बहुत गंभीर है। कि तेरे लिए तो सब अवसर आ चुका है, कुछ नहीं है तेरे को, काम अपना नहीं हुए, आत्म कल्याण नहीं हुए, ऐसे कोई बात ही नहीं है तेरे को। तुम क्यों फालतू तुम्हारे में दब जाता हो, समझ में नहीं आता। वो ऐसे कर सके हैं इसलिए विशेष उत्साह रख करके क्या निर्योगास की बात क्या है। कृपाल में छिपे हैं वो तो ये सन्मार्ग का आत्मकल्याण करने का अधिकारी जी कौन होता है। तो जो विनियोल्लास में आता है विशेष बात है, मनुष्य की भूमिका में आने वाले करीब करीब मनुष्यों को वैराग्य प्राप्त होता है, तो कठाई की शांतता होती है। तो देवगुरु शास्त्र के वचन पर आस्थावी होती है, उनको कषाय की शांतता वैराग्य होता है, अनुकंपा होती है। अनुकंपा मैंने एक भी किसी भी कोई भी जीव को हमारे कारण से दुख न हो इसे अनुकंपा का भी सम सुंदेरी गिरे आस्था अनुकंपा। उसके शून्य है उत्सुण है, निर्वेद में वैराग्य है, आस्था है वो हमारी श्रद्धा है, विश्वास भी जो कर्म करते हैं अनुकंपा भी होती है। लेकिन संवेद में वीरोल्लास बहुत कम जीव में होता है, काम होता है वीरोल्लास है। विचार होते हुए भी अगर वीरोल्लास नहीं होता है तो काम नहीं होता है। इसलिए बल देव के शब्द में वो बात इस तरह से आई है, उल्लासित विद्यमान तत्व पाने का मुख्य अधिकारी है। मुख्य अधिकारी क्या लिखा है, जो उल्लासित विद्यमान मुमुक्ष होता है वो तत्व ग्रहण करने का मुख्य अधिकारी होता है। मुमुक्ष होते हुए भी एक बार खड़ी नहीं होती है, उत्पन्न नहीं होती है, उसका यहां सूचन किया है। इधर भी के विशेष उत्साह रख करके विरोल्लास से उल्लासित विजय से ऐसी आत्मनी की आत्मकल्याण की प्रवृत्ति कर्तव्य है, करने योग्य है। ऐसे हार जाना नहीं, निरुत्साह नहीं होना क्या है। हम दोस्त को अवलोकन करते हैं तो बहुत दोस्त दिखते हैं, फिर निरुत्साह हो जाते हैं, इतने ही है हमारे, इतने दोस्त हैं, तो ये निरुत्साह हो जाता है। तो क्या ठीक है, नहीं वो ठीक है। गुरु को देख करके और दोषों को भी देख करके हम
हमारा तो वन वे ट्रैफिक है, दोष देख करके दोष को टालने के लिए उल्लासी नहीं है, पर दूर देख करके दूर दूर को जुटाने के लिए हमारा तो वन वे ट्रैफिक है।
इसी
में आदत है हतोत्साह होने लायक
नहीं, डिक्शनरी में होना चाहिए,
नहीं डिक्शनरी में से उसको निकाल देना। तो होता है किसी को कुछ होता है किसी को कुछ होता है, इसलिए विशेष उत्साह रख करके प्रवृत्ति करने योग्य है। सभी मुक्तों को क्या लिखा दू,
सभी
सिर्फ शोभान भाई के परिवार को नहीं, इसलिए लिख दिया है संबोधन तो सुभाष भाई के परिवार को पत्र संबोधन है, फिर भी लिखा है कि सभी मुक्षुओं को इस बात का निश्चय निर्धार, ये तो ऐसा होना नहीं चाहिए, सब कुछ चलेगा, जीवन में सब कुछ चलेगा, मेरा आत्महित के बिना नहीं चल सकता, सब कुछ चल सकता है, ऐसा निश्चय होना, निर्धार होना, इस बात का निश्चय और नित्य नियम कर लेना चाहिए। दूसरा नियम नहीं हो कोई बात नहीं, किसका नियम ले लो, और नित्य होना चाहिए, हफ्ते में एक दिन, हफ्ते में दो दिन स्वाध्याय करना, रोज खाते हैं, रोज नींद भी लेते हैं, रोज पैसा भी कमाने को जाना पड़ता है, तो फिर ये हमारे जीवन के एक अंश में ये बात क्यों नहीं, अगर एक अंश में है तो मुख्यता इसकी हो जाएगी, फिर भले ही 22 घंटा 23 घंटा दूसरी बात होगी, इसको गलता हो जाएगी। समय है, समय का कैलकुलेशन इसमें नहीं होता है, मुख्यता गुणवत्ता की गिनती इसमें होती है, दूरी टाइप का कैलकुलेशन है, हमारी मुख्यता को कुछ बात का निश्चय करना चाहिए, नित्य नियम भी करना चाहिए। इस विषय में प्रमाण प्रमाद में दूसरे काम में लग जाना, हृदय में जुड़ जाना, इसी का नाम प्रमाद है, हमारे आत्महित के प्रयास को विस्मरण कर देना, यही प्रमाद है। प्रमाद और अनियमितता देखिए, जब खाने में हम नियमित खाएंगे तो तंदुरुस्ती बने रहेंगे, सोने में नियमित सोएंगे तो तंदुरुस्ती, ये शरीर की हम हमारे आत्मकल्याण में नियमित हो जाएंगे तो इसकी तंदुरुस्ती बनी रहेगी। तो राहत तो लागू ही है, अवरोध तो आत्मा को लागू ही है, इसलिए अनियमितता है उसको ताल लेना, तालना चाहिए, इस विषय में प्रमाद भी नहीं करना, अनियमितता भी नहीं लगना। देखिए दुर्देव का जीवन हमारे लिए जीवन काम है, वो जब धंधे में लगे थे, दुकान पर बैठते थे, तब भी दुकान पर पाते मिला भी टाइम मिला, घर पर तो खरीद करे थे, कहने की जरूरत नहीं, तो उसका चित्त ही मान लगता है और कहीं लगता नहीं है, तो वैसे वो जरूरत की चीज है, व्यापार करना, खाना पीना, इससे ज्यादा जरूरत की चीज हमारे आत्मकल्याण की है, इसका निश्चय हो गया तो नियमित रूप से तो हमेशा सुबह हम स्वाध्याय क्यों रखते हैं, हमारे मंडलों में भी बोले की आज्ञा से, बोले के बोध से, जो भी हमारे यहाँ स्वाध्याय चलते हैं नियमित रूप से कहते हैं, से हमेशा सुबह एक घंटा स्वाध्याय करना, टाइम फिक्स करना, कभी भी ऐसा नहीं चले, समय पर उपस्थित होना और नियमित रूप से स्वाध्याय करना, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होता है तो जीव के परिणाम का ठिकाना भी रहने वाला नहीं है, ऐसी बात हो जाती है। इसलिए नियमित रूप से होना ऐसे श्री गुरु की सदगुरु की आज्ञा है, सम्मान है और ये हमें माथे चढ़ाना चाहिए। सिरसावंद कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? सिरसावंद एक आज्ञा सिरसावंद होनी चाहिए। तो अपने आप को आप होता है और श्री भाई की ओर से और प्रांत दोस्तों के उपरना है पढ़ने में लेना है या और लेना है तो कोई विचार उसको बता दीजिए।
तो
उसको भी विस्मित करना और पत्र ही रह जाएगा, वही चला चलता रहेगा दो तीन घंटा। मूल पत्र पर आते हैं, ये तो थोड़ा निर्देश हो गया। पत्र का विधि से है, केवल निर्विकार होने पर भी परब्रह्म प्रेममय पराभक्ति के वश होता है, या हृदय में जिसने अनुभव किया है ऐसे ज्ञानियों की यह गुप्त शिक्षा है। क्या मधुघात वचनाम निकला है, ज्ञानियों की गुप्त शिक्षा लिखे चले गया है, शब्द में लिखी है उसको ऐसे लिखे, यह एक ज्ञानियों की गुप्त शिक्षा है। क्या ज्ञानियों की शिक्षा का दो प्रकार, बोध का दो प्रकार, एक गुप्त और एक प्रकट। गुप्त को मैंने सीक्रेट, क्या है रहस्यमय, कई बातें टॉप सीक्रेट की होती है, कई बात खुली होती है जी, जो गंभीर होती है मूल्यवान होती है उसी सेक्टिंग उसी सीक्रेसी होनी चाहिए रहनी चाहिए, ऐसी बात है। तो कहते हैं कि ज्ञानियों के हृदय में नहीं हुई एक गुप्त बात इस प्रसंग में हम बोल रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, मतलब आप इस बात को की किसी गंभीरता को अवधारण करिए, ऐसे ऐ गंभीरता से उसको पढ़ करके निकाल देना
ठीक नहीं है, ठीक है
ऐसी बात है उसकी, पर तो यही है बहुत सारा ही कि परब्रह्म कैसा है। परब्रह्म मैंने अपनी आत्मा त्रिकाल ध्रुव अब स्वविचलित स्वभाव, क्या निश्चित कैसा ही हो केवल निर्विकार, उसमें फीलिंग नहीं होती, क्या विकृति नहीं आती, सामर्थ्य रूप है वो परिपूर्ण शुद्ध है परिपूर्ण पवित्र है संपूर्ण अंतर्मुख स्वभावी है एकांत अंतर्मुख स्वभावी है एकांत निर्विकल्प है। ऐसी आत्मा केवल निर्विकार होने पर भी परब्रह्म उसको कहते हैं, परब्रह्म मैंने परब्रह्म विश्व के इसलिए उपयोग किया है, ये वेदांत की परिभाषा का शब्द है, जिन परिभाषा में इसका प्रयोग कुछ है कुछ कम है, आए तो भगवान के बारे में बात, लेकिन कुछ लोगों ने नया अर्थ निकाला तो कुछ शब्द को बहुत प्रयोग करने लग गए, तो देवतल भाषा में उसका प्रयोग कम इसलिए हुआ कि दोनों में कोई भ्रमित नहीं हो जाए, और कुमार भाई प्रारंभ में लिए हैं महावत्ती चौबीस विशाल का उससे उनका परिचय है, और वो कुछ वेदांत की और धर्म वाले भी थे, ऐसा कुछ संघ भी उनको था, उस संघ के कारण के उनके धर्म वेदांत तो उनकी भाषा में ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बच्चों को दवाई की गोली ऊपर चक्कर का लेप लगा करके देने में पताशे में देते हैं, पताशे बोलते हैं हिंदू
का जी बता
पताशे उसको दवाई छिठा करके खिला देते हैं, उसकी माँ की आती है ऐसे कृपाणु देव का ट्रीटमेंट देने का बहुत विशिष्ट प्रकार था, बहुत मैंने असाधारण असामान ऐसा प्रज्ञान महापुरुष से ऐसा कर सकता है से निकाल देते तो भाई को निकाल रहे हैं, वो आ गए हैं वहां से कि ये परब्रह्म की बात आप करते हो कभी कभी, वो लोग भी कहते हैं कि ये केवल निर्विकार होता है। परब्रह्म कैसा होता है?
निर्विकार,
केवल निर्विकार होता है।
उपरिणामी
है,
उपरिणाम,
हाँ परिणामी, ठीक है, उपस्थिति है, दोनों शब्द का प्रयोग विशेष होना है, परिणामी और उपस्थिति दोनों शब्दों का प्रयोग आता है। दो का भी आता है, दो है परिणामी स्पष्ट है, स्पष्टकार एक रूप है, शुद्ध है परम शुद्ध है, केवल निर्विकार है, सदा विशिष्ट है। अब निर्विकार है वो प्रेम कैसे करता है ये कहते हैं, क्या है भाषा अलंकार प्रेम तो विकारी परिणाम है और परब्रह्म तो केवल निर्विकार है, फिर भी जिसकी पराभक्ति प्रेम में होती है तो उसको विवश होना पड़ता है ये कहते हैं। किसके कब्जे में आता है ऐसा परब्रह्म, किसके कब्जे में आता है? जिस ज्ञानी के परिणाम अनन्य रूप से उसमें लगते हैं, क्या परिणाम और परिणाम भी दो नहीं रहते हैं? परिणाम और अपरिणाम भी दो नहीं रहते हैं। ऐसी स्थिति में अनन्यता अनुभव में आती है, महसूस होती है, इसको पराभक्ति कहते हैं, अनन्य भक्ति कहते हैं। ऐसे अन्य भक्ति को उसको भी विवश होना पड़ता है, क्या उसके कब्जे में उसको आना पड़ता है। ज्ञानी की जो दृष्टि है, दृढ़ दृष्टि, शून्य दृष्टि है, वो पूर्वा त्रिकाली ध्रुवात्मा